हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
जी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से चार्ट बस्टर्स के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। आज की प्रोड्यूसर हैं गुलरुख। एक बार फिर यानी चार्ट बस्टर्स की तारीख में दूसरी बार चार्ट बस्टर्स के साथ यास्मीन जमील। सादिया असद आज प्रोग्रामों के प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनका प्रोग्राम होस्ट करूँ। कोशिश करूँगी कि ऐसा प्रोग्राम करूँ कि आपको सादिया की कमी महसूस ना हो और इसमें यास्मीनी रंग ज़रा कम कम हो। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के माजी की फिल्म और टीवी की अदाकारा और टीवी की न्यूज़ एंकर और अमेरिका में आज की एक गुलुकारा और स्टेज फनकारा बिंदिया की बातें भी सुनाएंगे और साथ साथ उनके नगमे और कुछ आपकी पसंद के नगमे और मुमकिन हुआ तो फेसबुक पर आपके सवालों के जवाब, आपकी अच्छी अच्छी बातें और टेलीफोन पर हमारे लिए या बिंदिया के लिए सवाल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फ़ोन नंबर तो आप जानते ही हैं, 0800 777 89। और हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम नशर हो रहा है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और रेडियो पर पाकिस्तान में मीडियम वेव 972 पर। तो इससे पहले कि प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं, बिंदिया को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो इस वक्त न्यूयॉर्क से टेलीफोन पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बिंदिया।
वालेकुम सलाम, क्या है, कैसे हैं आप?
बेहद शुक्रिया और वालेकुम सलाम चार्ट बस्टर्स के सुनने वालों के लिए अपना वक्त निकालने का। और आपका हमारा ख्याल है कि ये पहला प्रोग्राम है जिस पहली बार
सब सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम पहुंची।
कैसी हैं और क्या कर रही हैं आजकल न्यूयॉर्क में?
हम बिल्कुल ठीक हैं, आजकल हम रेस्ट कर रहे हैं
यानी मसरूफ जिंदगी में आप कुछ देर रुक गई हैं?
नहीं, हमने हमेशा जिंदगी अपने ठहराव से गुजारी है,
किसी
के ऑर्डर पे नहीं गुजारी, अपने ही मन पसंद से गुजारी है।
चलिए,
जो जरूरी काम होता है वो करते हैं।
तो ठीक, जहाँ आप रुकी हैं तो कुछ देर हम भी रुकते हैं और इसके बाद हम इस सफर को, ये जो नगमाती सफर है बेसिकली, इसका आगाज करेंगे।
बात के बहाने कुछ देर तो रुक जाओ,
देर अभी रुक जाते हैं, बहाना बरसात का तो नहीं है लेकिन बहाना है चार बातें करने का। और ये जो नगमा है हम इसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में भी आपको सुनवा दें।
ये जो कुछ देर तो रुक जाओ, ये हमारी फिल्म बड़ा आदमी का गाना था तो उसका हमने कहा अपनी आवाज़।
हाँ, तो यही हम बताने वाले थे कि बिंदिया आजकल यहाँ पर क्या कर रही है। बिंदिया आजकल यही कर रही है, खुद भी रुकी हुई है और कुछ ऐसे नगमे भी गा रही है, रुकने के, चलने के, सफर के वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं, दो चार बातें तो नहीं, बहुत सी बातें करेंगे बिंदिया से और अपने सुनने वालों से भी। बिंदिया कुछ बताइए कि हम अपने, हमारे सुनने वाले बहुत सारे तो शायद आपको, शायद क्यों, यकीनन आपको जानते होंगे, उन्होंने आपका नाम भी सुना होगा। पाकिस्तान के माजी की फिल्म और टीवी की अदाकारा हैं, टीवी की न्यूज़ एंकर है और अमेरिका में आजकल जो है आप गुलकारी भी कर रही हैं, स्टेज की फनकारी भी कर रही हैं। तो बताइए कि आपने ये जो अपनी फनकारी का सफर था उसका आगाज कहाँ से किया था, उस सफर के आगाज में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, सफर के इस रास्ते में उन मुश्किलात ने आपको कहाँ कहाँ रोका, किस किस मोड़ पर क्या क्या सीखा और जो कुछ सीखा उससे क्या फायदा उठाया खुद और क्या फायदा पहुंचाया दूसरों को।
हम ये नहीं देखते कि क्या मुश्किलात, देखी मुश्किलात तो हर काम में होता है और खासतौर पर पाकिस्तान से एक वहाँ पे कंजर्वेटिव माहौल है, वहाँ मूवीज ज्वाइन करना, फैमिली का अगेंस्ट होना, हम पे बॉयकॉट कर देना, सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, घर छीन लिया, सब कुछ, लेकिन उधर स्ट्रगल करना आसान काम नहीं है।
शुरू कहाँ से किया था ये सफर? आपने पाकिस्तान टेलीविजन से शुरू किया,
इंग्लिश न्यूज कास्ट से पीटीवी में शुरू किया था, उसके बाद हम पीटीवी प्लेज में आए, फिर हम फिल्मों में गए, फिर थिएटर किया, मतलब सारे मीडियाज हमने पार किए।
अच्छा।
और बहुत मुश्किल था हमारे रास्ते में बहुत लोग आए, क्योंकि एक तो उस वक्त तो खैर पढ़ाई कर रहे थे, हम दसवीं नहीं किया था, फिर हमने मास्टर्स किया, लेकिन हमारी जबान वो लोग नहीं समझते थे और हम उनकी नहीं समझते थे।
क्यों, क्या जबान थी आपकी, बंगाली जबान थी?
हमारी जबान बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन वहाँ का एक लॉबी होती है। खैर, हमारे साथ सबने बड़ी इज्जत से पेश आए क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई उनकी पॉलिटिक्स की।
अच्छा अच्छा।
हमें कभी शौक भी नहीं था एक्टिंग का, ना आती थी कभी एक्टिंग, ना हम सोचते हैं अभी भी आती है, लेकिन बस हम जाते थे, अगर हो जाता थी फिल्म तो ठीक है, अगर वो कट कर देते तो हम कहते थे अच्छा खुदा से हम जा रहे हैं, तो हमें कभी बुरा भी नहीं लगता था। और अभी तक ऐसा ही है, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने तौर तरीके से, कोई गलत तरीके से काम नहीं करते, बड़ी डिसेंटली। और प्रेस में और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हमारी बड़ी इज्जत की है, हमें काम चाहे वो दिल, हम कभी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, हम उन्हें लास्ट चॉइस भी नहीं थे, वो उनकी मजबूरी की चॉइस थे हम, कि जब कोई नहीं मिलता कि चलो बिंदिया।
अच्छा। तो बारहवें खिलाड़ी की तरह से आपने शिरकत की उसमें,
तो 112वें खिलाड़ी थे। अच्छा। और हम खुश थे। अच्छा, हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है।
जाहिर है, 15 साल की, 16 साल की बच्ची को उस वक्त क्या पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि
अब तो हम 15 साल के नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं हमें समझ आती
जब हम,
अपने एक हिसाब से चलते, वो अल्लाह ताला हमारा साथ दे देता है।
अच्छा,
कुदरती तौर पे।
तो आपने बहरहाल ये तो किया कि जो कुछ आपको मुश्किलात पेश आई और जो कुछ रास्ते में रुकावटें पेश आई उनसे अपने लिए तो कुछ सीखा ना आपने।
हमने बहुत कुछ सीखा भाई, देखिए एक बंदा मुश्किल डालता था तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। इतनी सारी चीजें हमने सीखी कि टैलेंट इतना है मेरे में, हमें पता नहीं था। कभी उन्होंने तंग करना एक्टिंग में तो हमने सिंगिंग में आ जाना, सिंगिंग में करना तो हमने थिएटर में चले जाना, बहुत तंग करना तो प्रोडक्शन में आ जाना, डायरेक्शन में, मतलब आई कॉन्क्वर्ड एवरी मीडिया, आई डिड नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, क्योंकि एक दफा हमने कहा छलांग लगा लिए कुएं में तो अब तो या तरना है या मरना है।
या करना है या मरना है। अच्छा, लेकिन कर 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 दिया, मरे नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले गए जिंदा इंसानों की तरह।
ये असल में सारी पब्लिक जो हमें प्यार करती है और अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ हुआ है। हम इंसान कोई कुछ किसी काम के काबिल नहीं होता, वो सारी इशारा अल्लाह ताला का आ रहा होता है, उसका हुक्म से सारा कुछ होता है। हम इतने ऐसे ऐसी पोजीशन में आए हैं कि कभी सोच नहीं सकते कि हम वापस चले जाएंगे, या हम सिंगिंग भी करेंगे या हम इन भी होंगे। देखिए आजकल तो यंग जनरेशन आ गई और बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, बहुत प्यारे बच्चे आए, उनके सामने कहाँ कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन अभी भी लोग प्यार करते हैं, अभी भी चाहते हैं।
तो कुछ बताइए कि वो कौन सा दौर था जब आपने एंट्री ली थी फनकारी की दुनिया में?
हमने इसमें 80s में एक्टिंग में एंट्री ली थी और उस वक्त से रुके ही नहीं, और हमारे जमाने में सिर्फ पीटी भी होता था, एंड वी टू थिंक कि द डायरेक्टर कास्ट अस, मे बी ये दिस इज द लास्ट प्ले, ये लास्ट होगा, ये कहाँ भी पूछेंगे, हमने कभी अपना प्ले देखा भी नहीं मुड़के, क्योंकि हम सोचते थे लोग बाहर भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि लोग देंगे तो पत्थर मारेंगे, इतनी बुरी एक्टिंग की है. लेकिन फिर वो हमें कास्ट कर लेते थे. तो इट वाज गोइंग ऑन गोइंग, अभी तक प्रोडक्शन का बमार मचा हुआ है. लेकिन सिर्फ अभी ये है प्रॉब्लम के भगम दौड़ होती है. तो हमने कहा बाबा हम तो आए हैं काम करने, हमें स्क्रिप्ट दे दो, स्क्रिप्ट होगा उसको रिहर्सल करेंगे तो फिर हम करेंगे काम. उन्होंने साथ एक पर्चा हमारे नाक के सामने आके रख दिया, ये लेंगे ये अभी बोले. मैंने कहा ये कैसे तो उसी वक्त रट के समझ के तो हमने एक्टिंग की. हमने कहा ये हमसे नहीं होगा. आई वर्क विथ क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी. आप 10,000 प्ले दे दें तो इसका फायदा कुछ नहीं, जब आवाम ने पसंद नहीं करना. अच्छा. काम तो आवाम के लिए करते हैं ना, ठीक है अपने एक्सपेंसेस के लिए भी करते हैं, लेकिन मेनली इट्स द पब्लिक हु हैज टू लाइक यू.
बिल्कुल. अरशद नदीम गुल्लू हमारे साथ हैं टेलीफोन पर, और खालिद उमर नियाजी हैं. पहले इनको सुन लेते हैं कि ये आपसे क्या सवाल करना चाह रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम अरशद नदीम गुल्लू साहब.
अस्सलाम वालेकुम. अरशद नदीम गुल्लू बात कर रहा हूँ, माल हैदराबाद बक्कर शहर से.
बक्कर से बात कर रहे हैं, बिंदिया को जानते हैं
जी? नहीं इनको मैं नहीं जानता, मैंने तो शादी के लिए कॉल करनी थी, फिर मैंने कहा चलो आपसे भी बात हो जाए.
चलिए जी शादी से बात नहीं हुई तो हमें भी आज शादी समझिए. क्या क्या बात करनी थी?
जी जी. अच्छा पता क्या, उनसे मुझे गिला था, 2 हफ्ते उन्होंने मेरा फेसबुक का मैसेज नहीं पढ़ा. और मैंने उनको नाम बताना था, वो बता रही थी भाई प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का इरादा है. मैंने कहा भाई उनको कहूंगा प्रोग्राम का नाम रखे धरना ग्राउंड उर्दू ही के साथ.
धरना ग्राउंड
धनक रंग.
धनक रंग. अच्छा मैंने कही धरना.
क्योंकि मुख्तलिफ जबानों में लोग फरमाइश करते हैं ना इस प्रोग्राम में.
चलिए आप आपका वो सवाल जो है वो आज पढ़ लेंगी, वो आज देखेंगी जरूर, और हम भी बता देंगे कि आपने धनक रंग तजवीज़ किया है. बेहद शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया. खालिद उमर नियाजी हमारे साथ मौजूद है. जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी
ऐसी बात है कि आज रेडियो पे मेरे पे तो आपका शो नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है.
अच्छा चलिए कोई बात कर लीजिए जल्दी से. हमारे साथ बिंदिया मौजूद है.
आप बात करें.
कौन जी?
अच्छा चलिए आपने जी खालिद साहब आप सवाल कीजिए या कुछ पूछिए हमसे. जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब. मेरा ख्याल है बिंदिया जंग से फयाज हमारे साथ मौजूद है. जी फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम. फयाज साहब
हेलो अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम. जी फरमाइए. यास्मीन
जमी बात कर रहा हूँ रुझान से.
जी जी बोलिए क्या क्या कहेंगे आप आज के प्रोग्राम के लिए?
अताउल्ला का गीत सुना दें.
अताउल्ला का गीत तो जी साथ यही सुनाएंगी आपको, आज तो हमारे पास है नहीं. लेकिन आपको आज हम अपनी माजी की एक फनकारा और आज की एक गुलकारा बिंदिया हमारे साथ मेहमान है, उनके नगमे आपको सुनवाएंगे. और बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया. तो बिंदिया चलिए अब आगे चलते हैं कि आप को अभी कॉलर्स और भी आएंगे और यकीनन वो भी आपसे कुछ पूछेंगे, लेकिन हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपको पता नहीं था कि आपके अंदर इतना बड़ा फनकार छुपा हुआ है, लेकिन आप चलती गई इस सफर में और यहाँ अमेरिका तक पहुँच गई हैं. तो बताइए कि अमेरिका में ये जो फनकारी है उसके जौहर अपने दिखाने के कहाँ कहाँ मौके मिलते हैं आपको?
यहाँ पे अभी कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कनाडा में शूट कर रहे हैं और अमेरिका में. कल ही एक बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हम आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, तो देखेंगे कैसा स्क्रिप्ट होगा. जरूरी नहीं अमेरिका में बैठे हैं तो हम यहाँ का स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे. स्क्रिप्ट पे बात होती है. पाकिस्तान में भी अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, तो स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो जाया नहीं करेंगे अपने आप को.
अच्छा लेकिन ये किस स्टेज पर आप अगर हो तो मुजाहरे यानी अपना गुलकारी करती हैं यहाँ पर अमेरिका में?
हाँ जी हाँ परफॉर्मेंसेस करती हैं.
परफॉर्मेंसेस करती हैं तो ज्यादातर कौन से
हर जबान में गाते हैं?
हर जबान में. कितनी जबानों में?
मतलब सराई की भी गाते हैं, पंजाबी उर्दू इंग्लिश
सब गाते हैं.
हाँ,
चलिए जी. तो हम अपने सुनने वालों को बिंदिया के पंजाबी उर्दू पंजाबी तो नहीं सराई की उर्दू इंग्लिश और फोक नगमे सभी जो कुछ हमारे पास इस वक्त मौजूद है इनको सुनवाएंगे. तो इस वक्त आपका एक नगमा है तुम्बा योए का मतलब क्या है?
ये सराई की गाना, ये तुम्बा एक इंस्ट्रूमेंट होता है.
अच्छा 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 अच्छा
करते हैं हाथ से रख के.
लेकिन अच्छा तुम भाई सुनाने से पहले खालिद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लें प्रोग्राम में. जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम. खालिद साहब
वालेकुम सलाम, मैं मोहसिन हुसैन
जी, बताइए क्या कहना चाहेंगी आज के प्रोग्राम में। जी यास्मीन जमील बोल रही हूँ,
मैं मार खालिद में बात कर रहा हूँ, तहसील यकतपुर जिला रेंजर खान से।
जी जी बोलिए।
पहले तो मैं राजा मामा सदर साहब को बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहूंगा कि वो अपने डेरे पे ना मूंगफलियों के साथ सोए पड़े हुए हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो मूंगफलियों का मौसम अभी आया तो नहीं है।
आपको सलाम वालेकुम।
अच्छा वालेकुम सलाम, बिंदिया आपको भी शायद सलाम कर रहा हूँ। जी जी बोलिए।
अच्छा भाजी, मेरे को सरायकेला को जाना, तो अपना गाना सुनो। मैं खुद सरायकेला, मेरे को सरायकेला बहुत अच्छा लगता है गाना, मेरे को सरायकेला सुना दियो।
चलो भाई जुलो जुलो
एक बोल।
हाँ सही, हूँ सुनो फिर क्या कहते हैं, तुम भई होए, तुम भई होए सरायकी नाम है, बिंदिया ने गाया और आप सबके लिए।
सरायकी जुबान से तो हमें इश्क है, बड़ी प्यारी जुबान,
तुम भई होए। तो लीजिए सुनते हैं। तुम्बई ओए तुम्बई ओए सराय की गीत था और बिंदिया ने इसे गाया था, हमारे सुनने वालों के लिए हमने पेश किया। और इससे पहले के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बिंदिया से मजीद बातें करें, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
जी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन का प्रोग्राम चार बस्टर्स, मैं हूँ मेज़बान यास्मीन जमील और आज सादी असद प्रोग्राम में नहीं है और उनकी जगह मेज़बानी के फ़राइज मुझे सौंपे गए हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम पेश कर दूँ। हमारे साथ माजी की मशहूर फिल्म स्टार, थिएटर और स्टेज की अदाकारा और गुलूकारा बिंदिया हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ सेठ मुमताज़ सरगोदा से मौजूद हैं। जी सेठ मुमताज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बोलिए।
सबसे पहले तो आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहते हैं, बड़ी खुशी हुई जब आप दूसरी दफा तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपको।
बस आपने उस दिन कहा था ना, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कभी कभी बदल देना चाहिए, तो चलिए आज बदल दिया आपने, बोलिए।
नहीं बहुत अच्छा लगा आपका आना, हम तो कहते हैं कि आप हर हफ्ते एक दूसरे हफ्ते आप तशरीफ लाया करें, बाजी साजी के साथ इकट्ठा प्रोग्राम किया करें, तो बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा बहुत शुक्रिया आपकी तजवीज का।
बशीर ताहिर और सेठ बरादरान बैठे हैं, बिंदिया बाजी साहब करनी है कि सलाम अर्ज करते हैं। एक फिल्म थी नजराना, बहन भाई और एक और भी फिल्म थी, नजराना भी फिल्म थी इनकी,
शादी मगर
इनकी फिल्म
शादी मगर आधी,
तो
अच्छा
जी वो सब फिल्में हमने देखी है इनकी।
अच्छा?
तो अब तो अमेरिका चली गई, बड़ा खुशी हुआ आज इनकी बातें सुन के। हाँ जी
चलिए,
तो इनको भी याद होगा, तो
बहुत शुक्रिया
सरगोधा, हम इनको आदाब करते हैं।
चलिए जी सरगोधा की तरफ से बिंदिया जी बोलिए
जी, बहुत बहुत आदाब आपको भी
जी। मेरे भाई शेख सेठ मुगर बैठे हैं, सेठ जफर बैठे हैं, राणा सलीम साहब बैठे हैं, और बशीर ताहिर खास कर सलाम अर्ज कर रहे हैं सरगोधा से।
चलिए जी पूरे सरगोधा का सलाम हुआ, बिंदिया आपको वालेकुम सलाम कहिए।
वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
और शुक्रिया के साथ अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले कि हम बिंदिया के और नगमे सुनाएं, हम बिंदिया आपसे सवाल करेंगे। आपने भी बताया कि आप चार जबानों में तो बुनियादी तौर पर महारत रखती हैं, और उनका फायदा उठाते हुए आपने यहाँ एक मुतरजिम का काम भी आपने किया कुछ अरसे।
हाँ जी, इंटरप्रेटर का किया है अमेरिका यूएस इमिग्रेशन में, चारों जबानों में।
कौन सी जुबानें हैं जिसकी आप बहुत माहिर हैं?
देखिए आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि तर्जमा जब होता है तो फिर इंग्लिश में तर्जमा करना पड़ता है। तो इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, क्योंकि बेसिकली हम कलकत्ता बंगाल से, मेरे डैडी बंगाल से थे, तो लोगों को इस बात का शायद ज्यादा नहीं पता, और बंगाली खून में तो गाना, क्लासिकल डांसिंग बहुत जरूरी होता है।
तो आपको डांसिंग भी आती है?
नहीं, क्लासिकल डांस आता है, कुदरती तौर पे सीखा भी हुआ है महाराज से।
अच्छा।
और सिंगिंग तो हमने सीखा कभी नहीं, लेकिन अम्मी बड़ी महारत रखती थी, वो घर 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 में ही होती थी, लेकिन अच्छा। कमर्शियली नहीं गाती थी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
वो रोशन आरा के लेवल का गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, कभी सीखा नहीं उनसे।
ये बड़ा बड़ा अलमिया था हमारे जमाने की वालदाओं का, कि उनके अंदर जो भी फन मौजूद था उसके इजहार के मौके उनको न मिले।
नहीं, लेकिन अम्मी को बहुत मिले, कि हमारे डैडी आर्मी में थे, एज अ जनरल ही डाइड, डॉक्टर थे, लेकिन वो उन्होंने उस्ताद रख के दिए हुए थे मम्मी को, कहते थे गाना तो जरूर सीखना है। वो तो घर में उस्ताद, सारी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में होते थे, तो हमें बड़ा शऊर है इस चीज का।
लेकिन पब्लिकली वो नहीं, उन्होंने नहीं गाया,
पब्लिकली नहीं गाया, बहुत खूबसूरत गाती थी, और हमें कहती थी अच्छा उस्ताद रखो, नहीं तो तुम्हें ये सारे चक्कर देंगे। इस वक्त हमने पटना से ही आना है,
तो हम ये कहें कि आपने अपना, अपनी जो गुलकारी है वो अपनी वालदा से सीखी थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अभी रिसेंटली 6 माह पहले यहाँ अमेरिका आने से पहले पाकिस्तान से हमने शफकत अली खान साहब, जो घराना 84 के, उनसे थोड़ी सी क्लासिकल ट्रेनिंग ली, लेकिन बेसिकली हमारे उस्ताद रहे थे रबानी साहब और जफर हुसैन, जो आजकल गाते हैं लाहौर में, और जो हमारे ज्यादातर गाने लिखे हुए, ये तुम्बाई है और दूसरा सराइकी का गाना सांबल तेरे नाम मेरे दिल विच वसाई, वो वाला वो खादिम हुसैन ने लिखा है, जिसने जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जमिया ही नहीं लिखा।
अच्छा।
तो उन्होंने ये दो गाने लिखे थे, और ये गाने ऐसे लिखे थे कि 10 मिनट पहले लिखे, और हम लोग गाड़ी में स्टूडियो गए, और गाड़ी में ही हमें जफर साहब सुनाते गए।
अच्छा।
सिखाते गए, हमने कहा अच्छा कैसे हम गाएंगे, कहते हैं गा लेंगी बस, हम खड़े ना पीछे आपके।
अच्छा। तो आपने गा लिया? आपने गा लिया,
कोशिश की।
अच्छा, तो बड़ी बात है, और आपको जो भी काम दिया गया, चाहे वो फौरी तौर पर दिया गया, आपने उसे कर दिया, और ऐसा किया कि
हमारे में थोड़ा सा ये है, फन है कि हम मल्टी टास्क हैं, काफी सारे काम इकट्ठे सारे निभा लेते हैं, लोग तो एक काम एक वक्त में करते हैं ना, हमें जब तक 10 काम ना मिले हमें चैन नहीं आता।
अच्छा, तो ये चार जबानें तो आपने कही, लेकिन एक पंजाबी जबान भी होती है ना, उसमें भी आपने
पंजाबी भी, हाँ, पंजाबी में भी हम,
तो एक नगमा था आपका, मुझे उसकी जबान में मुंडे या कुछ है उसमें, कुछ दे,
हाँ,
है? क्या है वो,
मुंडे सारे नचदे ही चंगे लगदे,
मुंडे सारे नचदे ही चंगे लगदे,
सारे नचदे ही चंगे लगदे।
तो ये नगमा हमने आपका, आपने हमें भेजा था, तो हम ये अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं कि बिंदिया ने ये यहाँ अमेरिका में आकर ये पंजाबी नगमा जो है, इसे कंपोज भी, कंपोज किसने किया?
नहीं, कंपोज तो राहिल ने किया था, राहिल फयाज ने, और लिखा था खालिद ने, हमारे लिए बहुत अच्छे टीम बनी थी एक हमारी।
अच्छा, तो थी का क्या मतलब, क्या वो टीम नहीं है?
टीम है, अभी भी है ये, अभी तो अमेरिका में ना, वो लोग पाकिस्तान में,
तो ये नगमा पाकिस्तान में बनाया था आपने?
पाकिस्तान में सारा कॉम्पोजिशन किया था, रिकॉर्डिंग की थी, और फिर हम यहाँ आए,
फिर
तो अभी रिलीज, हाँ रिलीज किया अभी पहली दफा।
हेलो, चलिए जी, मेरे ख्याल उनका
पहली दफा आप चला रही हैं ये गाने।
अरे वाह, अरे वाह,
क्योंकि अभी रिलीज करना है ना एल्बम को।
चलिए, अभी आज बिंदिया का वो नगमा जो अभी रिलीज नहीं हुआ, आज चार्ट बस्टर्स में रिलीज हो रहा है, तो सुनिए मुंडे सारे नचदे चंगे लगदे,
पीपल सारे नचदे चंगे लगदे,
पीपल सारे नचदे चंगे लगदे। अच्छा चलिए सुनिए। सारे नचदे ही चंगे लगदे। बेहद शुक्रिया बिंदिया, आपने अपना वो नगमा हमारे चैट बस्टर्स में रिलीज़ किया, जो अभी एल्बम जिसकी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और हाँ। कुछ कुछ रंग इसमें अबरारुल हक का मुझे नज़र आया, कुछ
पता नहीं हमें उस वक्त नहीं पता लगा, क्योंकि खैर अच्छी बात है अगर रंग नजर आया तो इब्रार बहुत अच्छा गाते हैं।
नहीं उनका वो जो था ना, उन्होंने कुछ इसी तरह के नगमे गाए और कुछ इसी तरह का अंदाज भी उनका था,
पंजाब का माहौल ही वो है।
हाँ तो, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपने बहुत बहुत खूबसूरत ये नगमा, और यकीनन हमारे सुनने वालों को पसंद आया होगा। नजीर अहमद हमारे साथ हैं गुजरांवाला से, तो देखते हैं कि वो नजीर अहमद क्या कह रहे हैं आपसे। जी नजीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। नजीर अहमद साहब नहीं है, चले गए।
हेलो
जी नजीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, चैट बस्टर्स में वेलकम।
जी अर्ज कर रहा हूँ, जी अर्ज कर रहा हूँ।
फरमाइए।
मौजूद मेहमान से मेरा सवाल है कि ये गा भी सकती हैं कुछ?
अरे भाई आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे प्रोग्राम कि टेलीफोन पकड़े बैठे
इनका इनका लिखा ये इन्होंने गाया है
और कौन गा रहा है अरे भाई बिंदिया अच्छा, बिंदिया
मैं तो कहा शायद इन्होंने गाना ये लिखा
आप
है।
अंदाजा लगाए अच्छा। माशाल्लाह इनकी इनका हमने वो नगमा अभी आपको सुनवाया जो भी रिलीज नहीं हुआ और आज चार्ट बस्टर्स में पहली बार इनका ये नगमा हमने रिलीज किया है इनकी इजाजत से और मिमी
तो एक्टिंग के साथ ये तो गुलोकारी भी बड़ी अच्छी है इनकी
माशाल्लाह ये इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया अदाकारा है ये टेलीविजन की ये अंग्रेजी न्यूज पढ़ा करती थी पाकिस्तान टेलीविजन पर इसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम किया नजराना बहन भाई शादी मगर आधी इसके बाद इन्होंने बहुत सी झोंक सियाल इनका पहला मेरे ख्याल जो मुझे याद है अच्छा जी नजीर साहब ये बिंदिया आपको सलाम कह रही है और
मैं भी सारी टीम को कह रहा हूँ जी मेहमान को भी और पूरी टीम को भी और सादिया ने पिछली दफा ना पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कोई टाइटल
जी जी हाँ टाइटल वो तो क्या टाइटल है बोलिए बोल दीजिए अगर आके
वो एक तो मैंने तो बहुत सारे लिखे हैं रगे जहाँ भी हो सकता है नकाबे रुख भी हो सकता है बज़्मे वफा भी हो सकता है ज़ौके परवाज भी हो सकता है वो मेरा मैसेज पढ़ लें
चलिए
बहुत लंबा है बहुत से नाम है
बहुत शुक्रिया हम सादिया से कहेंगे भी नजीर अहमद ने बहुत सारे मौजूद भेजे हैं जरा चुनिए उनमें से और उसको क्या कहना चाहिए रिलीज कर दें अच्छा तो बेहद शुक्रिया और हमारे साथ मिमी है भावलपुर से निमी है भावलपुर से निमी जी अस्सलाम
वालेकुम NIMMI
निमी
जी
निमी अस्सलाम वालेकुम
शहर की वालेकुम अस्सलाम
चलिए जी इन्होंने हमारा शहर याद दिला दिया भावलपुर से कॉल कर रही है
आप तो भूल गए हम नहीं भूले और ना हम विद्या साहबा को भूले
अच्छा, अच्छा
हमें इनके डांस भी याद है इनका गाना भी याद है इनका टीवी पे आकर अपने आप को इंतखाब कराना भी याद है बहुत प्यारी है बहुत प्यारी है
और आप क्या करती हैं निमी आप क्या करती हैं
जो कुछ नहीं करते ना वो बहुत कुछ करते हैं
तो बताइए ना एक बात तो आप भी बताइए ना ताकि दुनिया को पता लगे कि भावलपुर में जो लोग होते हैं क्या कुछ करते रहते हैं
बहुत कुछ करते रहते हैं इंसाफ करते हैं
अच्छा
सीधी राह पे चलते हैं
वाह
जल्दी सो जाते हैं सुबह जल्दी उठते हैं
माशाल्लाह माशाल्लाह तो बहुत शुक्रिया निमी कुछ और कहना चाहेंगी
हाँ आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और ये आज हमारी खुश नसीबी थी कि हमारी इतनी प्यारी एक्ट्रेस से हमारी बात हो गई
बहुत शुक्रिया तो जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमने आपका नगमा सुनवाया और बहुत पसंद आया लोगों को और आपने सराइकी भी गाया और यहाँ अमेरिका में आकर अंग्रेजी का रंग ज्यादा चढ़ा था कि पाकिस्तान में भी इंग्लिश के नगमे गा रही थी आप
नहीं नहीं अंग्रेजी का रंग तो स्कूल से चढ़ा था क्योंकि अमेरिकन स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब्बा अम्मी ने खींच के बहुत
नहीं म्यूजिक में मेरा मतलब है
हाँ म्यूजिक में हमने गाया है इंग्लिश के गाने भी आपको आपके पास
नहीं पाकिस्तान में भी गाए थे कि यहाँ पर आकर आपने
नहीं पाकिस्तान में अभी तक नहीं गाए क्योंकि ये नए गाने थे
ये नए तो ये लिखे भी आपने खुद हैं यहाँ पर जो अंग्रेजी और उर्दू मिक्स करके भी कुछ
वो खालिद ने और हमने इकट्ठे मिलके
लिखे भी हैं और उसकी फिर उसकी धुन किसने बनाई फिर
धुन राहिल फियाज ने बनाई थी
अच्छा ये राहिल ये जो आपकी टीम बन गई थी वही ये कर रही थी
तो ये जो हमने एक बंदा नहीं रखा टीम में क्योंकि बिजी होते हैं ना फिर उनके पास टाइम नहीं होता इन्होंने बनाए फिर वो जो बग्गा का छोटा भाई है जाहिद अली मुर्की उसने बनाए गाने फिर वो जो श, 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 वो जो इंडिया के प्रोग्राम में जीत के आए थे ना नबील उनके छोटे भाई ने शकील ने वो उन्होंने बनाए गाने
अच्छा।
तो काफी डिफरेंट लेकिन टीम अच्छी सारी मिलके ही टीम है एक
अमरीका में ये बड़ा फायदा है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए रहते हैं तो उनसे रابطे भी रहते हैं तो अगर मिलकर एक अच्छी टीम हर वक्त बनाई जा सकती है अच्छा।
लेकिन हम यहीं से बैठे बैठे उनको कह रहे थे म्यूजिक बनाए वो म्यूजिक हमें भेज देते हैं फिर यहाँ स्टूडियो ऑर्डर करके हम बुक करके वहाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं
चलिए एक और फायदा ये कि बेशक अमरीका आए या ना आए यहाँ पर टेक्नोलॉजी मौजूद है
काम नहीं रुकना चाहिए
काम नहीं रुकेगा तो भाई अगर कोई और भी इनकी टीम में शामिल होना चाहता है बिंदिया कुछ कहेंगी पाकिस्तान और दुनिया भर में अगर कोई बिंदिया के साथ कोई म्यूजिक करना चाहे तो बिंदिया का प्रोडक्शन हाजिर है ठीक चलिए हम आपका वो नगमा सुनाएं जो आपने गालिबन को जो खुदकुशी करने वालों के लिए लिखा था
नहीं नहीं हमने यंगस्टर्स के लिए लिखा है जो इश्क में पड़ जाते हैं फजूल में, टाइम इश्क का थोड़ी है, टाइम तो पढ़ाई लिखाई का है।
अच्छा।
सही रास्ते पे चलने का, फिर कोई धोखा देता है तो खुदकशी कर रहा होता है या बिल्कुल दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाता है, क्यों भाई आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो।
आपको ये जो दिल धड़कता है आपके सीने में अल्लाह ताला ने दिया, किसी बंदे ने नहीं दिया, तो यू शुड गो ऑन एंड मूव ऑन इन लाइफ, आगे बढ़े अपनी जिंदगी गुजारे। यही उसने मुझे धोखा दिया तो जाए जाए कहीं जाना अच्छा। आप क्यों अपना रुकती हैं काम, यू नो ये बहुत सीरियस मामला है यंगस्टर्स में, इतनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, हो जाए इमोशनल लेकिन देखें कि आपका फ्यूचर क्या आपको चाहते हैं, आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, उन्होंने पैदा किया है, उनका भी हक है आपके ऊपर, क्या ऐसी आप जिंदगी खराब कर दें। एक लड़का खूबसूरत नजर आ गया, जो दिखता खूबसूरत है जरूरी नहीं दिल का खूबसूरत हो, जो आपकी इज्जत करे वो खूबसूरत होता है।
तो जी बिंदिया का ये पैगाम उन नौजवानों के नाम जो अपनी जिंदगी को जो पढ़ाई के दिन है वो गुजारते हैं इधर उधर की बातों में, तो वो उसमें ना पढ़ें बल्कि पढ़ाई ये पढ़ने की उम्र है, पढ़ें और अपने मुस्तकबिल के लिए इस वक्त कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेट करें। अगर कोई रास्ते में कोई अच्छा इतना लग जाए तो जरूरी नहीं कि उसके पीछे पढ़कर आप अपनी जिंदगी को खराब कर दें, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें, और तो लेट हिम गो।
अगर पढ़ाई नहीं भी छोड़ी कर भी रहे हैं और बीच में पड़ जाएं तो फिर तो अपनी जिंदगी खराब होगी ना, अगर वो धोखा दे दे तो। ये जहन में रखें कि धोखा हो गया तो ये आपके नसीब में है और ये कोई बेहतरी के लिए हुआ है, नेगेटिवली ना सोचें, जस्ट मूव ऑन इन लाइफ।
तो
गाने में भी मूव ऑन का लफ्ज है,
तो मूव ऑन इन्होंने बिंदिया ने अंग्रेजी जबान का ये नगमा है और लेकिन बड़ा सिंपल सा है, नौजवानों को भी और हर एक को समझ में आ जाएगा। तो हम पेश कर रहे हैं बिंदिया की आवाज में वो नगमा जो इन्होंने अपने एक साथी की मदद से लिखा और खुद गाया, तो हम देखते हैं कि सुनने वालों को कैसा लगता है।
थैंक यू।
They just came a little close. They don't walk with you in the thunder. They never hold hands when you're low. When someone leaves you alone, don't try to find his clone. He was just like a shadow. Just try to be on your own. Find another zone and think something better.
Let him go, or show must go on. अच्छा वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से चार्ट बस्टर्स आप सुन रहे हैं और आज की मेज़बानी यास्मीन जमील के जिम्मे लगी है, सादिया असद आज नहीं है। और आज प्रोग्राम में ये तब्दीली है कि हमने आज अपनी एक मेहमान बिंदिया को मधु किया है, जिनकी बातें भी आप सुन रहे हैं और जिनके नगमे भी आप सुन रहे हैं, जो फनकारा ऐसी हैं कि अदाकारा भी हैं और वो न्यूज़ रीडर भी रह चुकी हैं पीटीवी की और फिल्मों में। हाँ ये लाजमी जी तस्हीह कर लीजिए, न्यूज़ रीडर नहीं है, अंग्रेज़ी की ये खबरें पढ़ा करती थी पीटीवी से और पीटीवी के ड्रामों में बड़ा इन्होंने पार्ट प्ले किया और बाद में भी ये वापस भी गई थी एक बार और फिर कुछ आपने फिर लेकिन चलिए इस बात को
हमने किए दो तीन प्लेस किए, चार पाँच छः सात
लेकिन कुछ मजा नहीं आया, उधर बहुत भगम दौड़ थी।
कब गई थी आप, कब वापस गई थी?
हम 2009 में गए थे, 2015 तक, लेकिन उसमें हमें कुछ सेंस नजर नहीं आया, इसलिए हमने सोचा कि अब के जाएंगे तो अपनी प्रोडक्शंस करेंगे, लोगों की भी करेंगे लेकिन ढंग से करेंगे। ये तो कोई इधर से खींचता उधर से खींचता, भी पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, पैसा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक उसूल से काम करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड से करना चाहिए काम। वहाँ स्टैंडर्ड नहीं रहा, अच्छे प्लेस बनते हैं लेकिन कुछ कुछ अच्छे। तो हमने कहा नहीं, हम तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमारे तो बड़ों ने ऐसा काम नहीं सिखाया हमें कि फौरन ही पर्चा आ जाता जी पढ़ो।
नहीं, लेकिन आप 2009 में गई थी, अब तो 2018 आ गया, मेरा ख्याल है कि अब वो माहौल वो नहीं होगा जिस वक्त आप गई।
नहीं नहीं, अब भी वही कुछ हो रहा है, लेकिन बेहतर लोग आ गए।
अच्छा,
बेहतर आ गए। हाँ, क्योंकि उनको पता लग गया कि हर ड्रामा तो नहीं चल सकता ना, अगर इस तरह से काम होगा।
यस यस,
दो दिन। और फिर डायरेक्टर्स को कुछ थोड़े से नए लोग बहुत तंग भी करते हैं, क्योंकि उनमें सबर नहीं है, उनमें ठहराव नहीं है, वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके चले जाते हैं या फोन पे लगे रहते हैं सेट पे। भाई, काम के वक्त आपके फोन का क्या था, उसको साइलेंट पे रख दें, आप काम करें, जब ब्रेक हो तो फिर आप फोन यूज करें। तो ये बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बड़ी डिसरिस्पेक्ट होता है सीनियर्स का भी और जूनियर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी। लेकिन आजकल के कुछ डायरेक्टर्स हैं वो तो डरते हैं आर्टिस्ट से, वो बोल ही नहीं सकते कि जी ऐसा ना करें, वो सारा शॉट बंद करके रख देते हैं। हमने कहा ये तो आपको करना चाहिए, डायरेक्टर फोन सारे लेके एक साइड पे लॉकर में लॉक कर दें और अपना काम करें, जब काम खत्म हो लॉकर से खोल। यस, दिस शुड बी।
तो ये शिफा बिंदिया हमारे साथ, शिफा है चित्राल से और कमाल खान है कहीं से, वो भी खुद बताएंगे। जी शिफा, आप बताइए क्या पूछेंगी आप चैट बस्टर्स में हमारी मेहमान बिंदिया से। जी कमाल खान जी, जी बोलिए कमाल, वेलकम वेलकम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कमाल खान बोलिए।
अस्सलाम वालेकुम।
जी बोलिए कमाल खान।
जी मैं बोल रहा हूँ।
बोलिए।
जी मैं बोल रहा हूँ।
बोलिए।
जी हेलो
हेलो हेलो
हेलो।
मेरा ख्याल है कि उनको हमारी आवाज नहीं जा रही, तो इतने में हम शिफा से बात करते। जी शिफा कहाँ से? चित्राल से। शिफा शिफा है, बोलिए। कौन बोला?
जबरदस्त जबरदस्त, आप जबरदस्त प्रोग्राम, हर फरी मौला है, जिस तरीके से आपने प्रोग्राम शो किया जबरदस्त मजा आया, और जैसे आपने पंजाबी गाना हमें सुनाया बहुत मजा आया।
बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया, बस हमारा हमारी तो मेहनत वसूल हो गई।
यहाँ बहुत ठंड है, बस हम रजाइयों में सो रहे हैं, इतना ठंड है चित्राल में।
अच्छा ठंड है।
मैंने एक दफा पहले तीन जुमा पहले फरमाइश किया था गाने का, तीन जुमा गुजर गया, वो गाना आपने नहीं सुनाया।
अच्छा, मैं सादिया से कहूंगी, भाई मैं तो यास्मीन बोल रही हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे शायद, तो मैं उनको कहूंगी भाई।
क्यों नहीं पहचान रहे हैं, क्यों नहीं पहचान, पहचान रहे हैं आप, हमारे बहन है, लेकिन वो हमारा जो वो था फरमाइश हमने की थी वो नहीं सुनाया।
मैं पक्की शिकायत लगाती हूँ,
रेडियो ऑन किया तो आपका ये पंजाबी गाना सुना, बड़ा मजा आया मुझे।
चलिए बहुत शुक्रिया, और हम आपकी पक्की पक्की शिकायत लगाएंगे सादिया को, कमाल खान की फरमाइश पूरी करें। शिफा हमारे साथ है, शिफा अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अच्छा ये शिफा थे। मलिक मिराज साहब हमारे साथ हैं। जी मलिक मिराज साहब।
जी जी
जी अस्सलाम वालेकुम।
दरअसल बिंदिया को अपनी आवाज सुनवाना चाहता था, क्या मैं सिंगर बन सकता हूँ?
चलिए जल्दी से, बस 30 सेकंड से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगी, बोलिए गाइए।
सुनिए
सुनाइए भाई।
तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें, हम तो दीवाने हो गए हैं सनम नहीं क्या हम करें, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें।
भाई वाह वाह, बिंदिया बताइए ये गुलूकार किसी वक्त बन सकते हैं आने वाले दौर में? या अभी
प्रैक्टिस करेंगे तो बन सकते हैं।
चलिए भी मुबारक हो मेरा साहब, आपको आप पास हो गए म्यूजिक के इम्तिहान में। पता नहीं अब कितने नंबर लिए, कितने नंबर दिए बिंदिया?
नहीं अभी नंबरों पे ना जाएं, प्रैक्टिस कर लें।
चलिए जी प्रैक्टिस करें।
एक और बात भी बताना चाहता हूँ, میں تھوڑا معذور بھی ہوں, آنکھوں کا مسئلہ ہے میرا پیدائشی.
سوری. اچھا تو
لیکن آوازیں بہت بنا لیتا ہوں میں.
بس آوازیں بھی بنائیے انشاءاللہ, آپ پریکٹس جاری رکھیں, بدیا نے کہا ہے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. تو بے حد شکریہ میرا صاحب. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی چارٹ بسٹرز میں بندیا ہماری مہمان ہیں, ساتھ ساتھ ہم ان کے نقل سنوا رہے ہیں اپنے سننے والوں کو اور ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سنوا رہے ہیں. تو بندیا یہ بتائیے کہ یہاں امریکہ میں جو پاکستانی فنکار ہیں ان کے لیے موسیقی کو ایز پروفیشن اپنانے کے کیا مواقع ہیں؟
اٹ ڈیپینڈس, یہاں کا کراؤڈ جن کو پسند کرتا ہے پھر وہی آرٹسٹ کو پروموٹرز لے کر آتے ہیں پاکستان سے, اور جو یہاں پر ہیں وہ تو اپنے لوکل شوز کرتے رہتے ہیں. لیکن وہاں جو ان ہوتا ہے جو بہت پروگرامز میں آ رہا ہوتا ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ, تو پھر ان کو بک کر کے لے آتے ہیں.
لیکن یہاں کے فنکاروں کو موقع نہیں ملتے
یہاں پہ جو امریکہ میں,
پاکستانی فنکار, پاکستانی امریکی,
پتہ نہیں ہم تو زیادہ اس بارے میں نہیں جانتے.
اچھا
ہم تو آپ نہیں کام کرتے.
اچھا آپ اپنے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں تو آپ کو ان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا. اچھا تو ایک نغمہ آپ کا تھا, پتہ نہیں اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, سوال تیرا تھا, کیا تھا وہ نغمہ؟
چاول تیرا نام ہے یہ سرائیکی میں, ساول کہتے ہیں میری جان کو, مطلب
وہ تو مجھے نہ بتائے نا باپ, ساول تو مجھے پتا ہے لیکن جو لکھا ہوا تھا نا اس میں این غائب تھا تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اچھا تو یہ سرائیکی نغمہ بندیا نے گایا تھا اور یہ فوک ہے ظاہر ہے,
ہاں
فوک نغمہ ہے. تو بندیا کا ایک فوک نغمہ اپنے سننے والوں کی نظر. جی بندیا, بہت خوبصورت آپ نے گایا اور آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی. اور آپ, ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ بندیا کو اگر آپ آج بھی دیکھیں تو وہ اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی کہ ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب یہ فلموں میں کام کیا کرتی تھی, جس وقت ٹیلی ویژن.
یہ تو آپ پہ نظر ہے.
میں آپ سے ابھی تازہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, کچھ بتائیے. وہ آپ کو ایک ایوارڈ مل رہے تھے, چولستان لائنز کلب نے آپ کو ایک ایوارڈ دیا تھا یہاں امریکہ میں آ کر, آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کو خراج پیش کرتے ہوئے. تو اس وقت میں نے آپ کو دیکھا تھا.
ہاں, وہ سرائے کی سرکٹ کے لوگ ہیں اور سرائے کی سارے صوبے ہمیں بڑے پسند ہیں اپنے ملک کے, لیکن سرائے کی کا جو زبان ہے نا, وہ صوبہ, اس کا ہمیں عشق ہے بہت ہی. اور وہاں کے جو ایک سنگر ہیں, اصل میں تالا نیازی سے ہمیں بڑی اٹریکشن ہوئی تھی یہ گانے ایسے گانے کے لیے. تو ہم نے ان سے کہا ہمارے ساتھ گانے گائیں, تو ان کے پاس وقت نہیں تھا, ہمیں بہت دل خراب ہوا. تو پھر ثناءاللہ نیازی ایک ہیں جو گاتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ ہمارے کافی گانے تیار ہیں, ابھی جا کے وہاں ریکارڈ کر کے ویڈیو بنانی ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے ملتان سرکٹ اور خانے وال کے سرکٹ میں شوز کرنے ہیں بہت سارے.
اچھا, سرائے
کی ہی زبان میں. ہاں,
اچھا. تو اس کے علاوہ آپ کے اور کیا پروگرامس ہیں
کہاں پہ
یہاں پر امریکہ میں؟ اب اور کیا کریں گی, ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں 4 منٹ رہ گئے ہیں. تو آپ اپنے بتائیے کہ اب آپ کا فیوچر کیا ہے یہاں پر ایز فنکارہ.
دیکھیں, ہم اپنا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ایز فنکارہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. جب ہم یہاں آئے تھے سب نے کہا وہاں کیوں چلی گئی, میں نے کہا بھائی ہجرت ہے, قرآن شریف میں بھی مینشن ہے, ہجرت اگر ہو تو جانا ہی پڑتا ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ پہ, جہاں تمہارے قسمت لے جائے وہاں ہی چلے جاتے ہیں. تو اگر پاکستان آنا ہمارے لیے ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریب وہاں جائیں گے, آنا جانا رکھیں گے, یہاں بھی کام کریں گے وہاں بھی کام کریں گے. اب جب اسٹارٹ کریں گے, ابھی چھوڑنا نہیں, نیچے مڑ کے نہیں دیکھنا. ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں, بچوں کو پال لیا ہے, سب بڑے سیٹ ہیں اپنی اپنی جگہ. تو بڑی اچھی ذمہ داری ہم نے نبھائی ہے, کیونکہ امریکہ آئے تھے بچے, اور اگر امریکہ میں ایک بڑا گھر میں نہ ہو تو بچوں کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوتی, ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. چاہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, سب یا تعلیم وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو ادب اداب اور سارے.
تو آپ نے نہ صرف یہ کہ فنکاری کی دنیا میں اپنے لگ کر کام کیا, بلکہ آپ نے ایک ماں کی حیثیت سے بھی اپنا رول پلے کیا اور اپنے بچوں کو.
وہ تو سب سے بڑا رول ہے نا, کیونکہ بچے آپ کے فیوچر ہوتے ہیں, بچے ملک کا فیوچر ہوتے ہیں, بچے سارا سیٹ نظام بدل کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کی ٹریننگ اچھی نہیں ہوگی, جیسے ہمارے ماں باپ کی ٹریننگ اچھی نہیں تھی, یا ان کے ماں باپ کی, جب میرے فادر ڈاکٹر تھے, جنرل تھے, ان کے فادر چیف جسٹس تھے, اور مطلب سارے ایک پڑھائی لکھائی کا ماحول تھا, جائیدادیں بک جاتی تھی پڑھائی لکھائی کے اوپر, اتنا اسٹرانگ فیملی تھی. اور امی کا خاندان زیادہ تر بزنس میں تھا, لیکن لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے تھے نویں کے بعد, تو امی نے بغاوت کی, انہوں نے پڑھ لیا. لیکن یہ کہ بہت رکاوٹیں ان کی زندگی میں بھی آئیں, ہمارے میں بھی یہ آئیں کہ ہم پاکستان سے تھے اور پاکستان میں کنزرویٹو ماحول تھا, سب بہن بھائیوں نے کسی نے اجازت نہیں دی تھی آنے کے لیے, تو وہ ایک اسٹینڈ لیا. تو بہت مشکلیں دیکھی ہیں, لیکن کبھی مشکل کو مشکل کر کے نہیں دیکھا. ہم نے کہا بس کرنا ہے آگے.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو کچھ چاہا وہ کیا اور خوب بھرپور طریقے سے کیا, اور آج ماشاءاللہ آپ ایک اچھے مقام پر کھڑی ہیں, آپ کی اولاد ایک اچھے مقام پر موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بندیا, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور آپ کا ایک نغمہ جو سرائے کی زبان میں ہے اس کے ساتھ ہم
آج سارے فرمائن کو ہماری طرف سے بہت شکریہ کہیں اور السلام علیکم کہیں.
جی جی,
سب سلامت رہیں, خوش رہیں, اور آپ بھی سلامت رہیں.
بہت شکریہ. چارٹ بسٹر سے یاسمین جمیل کو اجازت, اور ہماری پروڈیوسر تھی گلرخ, اور پروگرام کا اختتام اس خوبصورت موسیقی پر بندیا کی آواز میں.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں جوزگان، کندوز، ٹکر، ہیرت، زابل، فرا اور قندہار کے حملے شامل ہیں۔ قندہار میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر وہاں ہفتے کو ہونے والے انتخابات اب 27 اکتوبر کو ہوں گے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو طالبان کے حملوں میں قندہار صوبے کے گورنر جنرل عبدالرازق اور خفیہ ادارے کے چیف عبد المومن ہلاک ہوئے تھے، جبکہ امریکی جنرل سکاٹ ملر بال بال بچے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ افغانستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کابل میں آریانہ نیوز کے نمائندہ ماریارے عباسین کہتے ہیں کہ حالانکہ حالات اس وقت افغانستان میں ٹھیک نہیں، لیکن انتخابات کے لیے پوری تیاری ہے۔
حالات کی بھی بات کی جائے تو حالات افغانستان میں پہلے سے بھی اچھے نہیں تھے، اور جب الیکشن کی بات آتی ہے تو الیکشن سے کئی دن پہلے ابھی حالت کچھ ایسی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بھی کچھ کنسرن سامنے آ رہے ہیں۔ پر دونوں ہی طور پہ یہ پہلا بار نہیں ہے جب افغانستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی الیکشن ہو چکے ہیں اور تب بھی سیم سچویشن تھا، کنسرن تھے پر الیکشن ہو گیا۔
کابل میں مقیم سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ ماضی کے انتخابات میں تشدد کے باوجود اب افغان سوچتے ہیں کہ ووٹ دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے،
اور انتخاب ہے ہی نہیں الیکشن کے سوا۔ سروس جو ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن میں کچھ بھی ہو حصہ لیں گے، اور ایٹ دی سیم ٹائم کنسرن لوگوں کے پاس یہ بھی ہے کہ سیکورٹی کنڈیشن کیسا ہوگا۔ ابھی جو ہم آ چکے ہیں تقریباً 17 سال آگے، تو اس کے بعد بھی جیسے کہ آپ نے گزشتے الیکشن میں دیکھا لوگوں کی انگلیاں کٹ گئی، مارے جا چکے لوگ، اور پھر بھی الیکشن آگے چلا گیا۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہوگا، جیسا بھی ہو ہوگا، اور اس کا ریزلٹ ابھی ایک اور کنسرن ہے۔ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز موجود تھے جیسے کہ میں نے کہا، اور یہ کنسرن بڑھ رہے ہیں، بٹ شارٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ویسا نارمل نہیں ہوگا جب پہلے کی طرح۔
عباسین کا کہنا تھا کہ انتخابی امیدواروں میں نئے چہرے سامنے آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے افغانستان کے مستقبل کے لیے نئی امید اجاگر ہوئی ہے۔
ابھی یہاں پہ کمپینز جو چل رہے تھے، تو کمپینز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اچھے چہرے ہیں جو وار لارڈ نہیں ہیں، جن کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگے نہیں ہوئے ہیں، ساتھ کا جہادی چہرے نہیں ہیں، اور بہت کم ہو چکے ہیں۔ کچھ کو تو الیکشن کمیشن نے لسٹ سے بھی نکال دیا اکارڈنگ ٹو الیکٹرل لا، کیونکہ ان کے پاس الیگل گروپس تھے، اور وہ گروپس جو ہاتھا پاری میں مشہور تھے، تو کئی لوگ نکل چکے ہیں، اور کئی چہرے ایسے جو ابھی بھی باقی ہے۔ بٹ مینلی ہم اگر دیکھیں تو بہت زیادہ چہرے ابھی آپ دیکھتے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے چہرے آ چکے ہیں، ڈپلومیٹک چہرے ان میں دکھ رہے ہیں، اور اس بار توقعات بیٹر الیکشن اور بیٹر پارلیمنٹ کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔
یہ تھے افغانستان میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مریارے عباسین۔ دوسری طرف پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج افغانستان میں بسنے والے تمام نسلی فرقوں کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔
جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کابل کے اندر جو بننے والی گورنمنٹ ہے ان پوسٹ امریکن ٹائم، اس کی شکل اور حیات کیسی ہوگی, آیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, سارے فیکشن اس میں ریپرزینٹیشن کیسی ہوگی, گو کہ افغانستان میں آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی لا رہے ہیں اور اس میں وہ الیکشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے پچھلے الیکشن کی طرف بھی دیکھا تو اشرف غنی کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان جو کشمکش رہی اور جو طالبانوں نے اس الیکشن کو نہیں مانا بلکہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, تو میرے خیال میں ایک ایسی ورکنگ سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر ہم یہ توقع کر سکیں کہ افغانستان میں امن جو ہے اچیویبل ہے, اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں.
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.